నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సాల్ మే 9 కరోడ్ లో ప్రసాదం జాతే దర్శన కట్టి ప్రాధాన్యత దర్శన కట్టి सब लोग दर्शन करते हैं, स्थानों का दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, बरसाने की परिक्रमा करते हैं और चले जाते हैं. बाकी जितने लोग हैं वो लोग सब वृंदावन में आते हैं, बांके बिहारी राधा गोविंद जी मेन मेन टेम्पल में चले जाते हैं. इस्कॉन का मंदिर, प्रेम मंदिर जैसे मेन मेन टेम्पल में चले जाते हैं. लेकिन ब्रजभूमि जो है ना, वो जो रियल ब्रजभूमि है वो बहुत अंदर अंदर के स्थानों में होता है. और भगवान ने जो लीलाएं की है ना, वो ब्रज के वनों में की है. और जो प्रमुख मंदिर है 5-6 वही लीला स्थलिया है, बाकी तो बाद में बनाए गए. जैसे राधा गोविंद जी का मंदिर तो लीला स्थली है, वो कैसे बना उसकी कथा है. सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वैसे बरसाने में भी लोग बहुत कम आते हैं, उसमें से फिल्टर करके लोग बरसाना आते हैं, क्योंकि बरसाना एक विशेष जगह है, राधा रानी का घर है वो. तो उसमें कुछ लोग आते हैं बहुत संख्या में दर्शन करने के लिए. पहले 7 करोड़ नंबर था, अभी 9 करोड़ हो गया, क्योंकि अभी जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे धार्मिकता भी बढ़ रही है. हम देख रहे हैं, वी कैन सी हर एक वीकेंड में, चाहे उत्सव हो या ना हो, भारत भर में सभी पवित्र स्थानों में सब रूम बुक रहते हैं, चाहे फेस्टिवल हो या ना हो, सब धार्मिकता बढ़ रही है. महाप्रभु जी का जो भविष्यवाणी थी वो सत्य होते हुए नजर आ रहा है. लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उसमें से कुछ ही से 4-5 हज़ार लोग होंगे जो वहाँ आते हैं और वो कुछ सेवा करते हैं. आना दर्शन करना बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि अगर आप ब्रज धाम में जाकर सेवा करते हैं और ज़्यादा दर्शन करते हैं उसके बाद में, तो उस दर्शन का लाभ बहुत ज़्यादा होता है. क्योंकि सेवा करने से जो कृपा प्राप्त होती है, वो कृपा के साथ जब दर्शन करने जाते हैं भक्तों के साथ, तो उसका लाभ कुछ और है. और उसका इतिहास ऐसा है कि परम पूज्य राधानाथ महाराज वृंदावन पहुंचे, है ना, एक दिन अमृतसर निकले थे वो ट्रेन से, और ट्रेन में इतनी भयंकर भीड़ थी कि एक स्टेशन पे वो उतरे थोड़ा सा हवा लेने के लिए, इतना अंदर पैक था. खिड़की से उतरे, सोचा कि खिड़की से वापस चले जाएंगे अंदर, लेकिन वो इतने लोग चढ़े उसके अंदर खिड़की से दरवाजे से कि वो चढ़ ही नहीं पाए. तो एक अनजान जगह पर वो प्लेटफॉर्म पर रह गए. तो उन्होंने पूछा, ये क्या है, व्हाट इज दिस प्लेस, कौन सी जगह है ये? तो उन्होंने कहा, मथुरा स्टेशन है ये. है ना, ऐसा भाग्य है. देखो, कोई प्लान नहीं वहां का, कुछ नहीं. इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हमारे हृदय में प्रामाणिक इच्छा होनी चाहिए. कभी भी यू शुड हैव अ सिंसियर प्योर डिजायर, फिर भगवान उसको पूरी करेंगे ही करेंगे निश्चित रूप से. बस उसमें मिक्सचर नहीं होना चाहिए, कुछ स्वार्थ का मिक्सचर नहीं होना चाहिए. तो चले थे अमृतसर, कहीं वो कहीं था, वो क्या था, वो ऊपर जाते ना, वो अमरनाथ, अमरनाथ वहां पर शायद जाने का प्लान था. उनके मित्र थे गहरी, वो मिलने वाले थे उनको वगैरह, फंस गए अभी इधर उतर गए. तो वो ने बोला, ये मथुरा है, बोले इसमें क्या होता है, बोले कृष्ण की भूमि है, कृष्ण की स्थान है ये. अच्छा, वाह, वेरी गुड. तो बोलते, आज जन्माष्टमी है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? चलो, मतलब अभी इंग्लिश हिंदी कैसा बात किया उनको मानो, लेकिन वी डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट. लेकिन पता चला कि जन्माष्टमी है, सब लोग चल के मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं. तो मथुरा वृंदावन जब पहुंचे तो उनको देखो, और एक प्रमाण है, आपका हृदय स्वच्छ होगा और आपका हृदय अगर प्रामाणिक होगा, आपके हृदय की इच्छाएं प्रामाणिक होगी, तो आपको अंदर से अनुभूतियां होंगी. जैसे ही वृंदावन में पहुंचे ना, तो उनको लगा कि दिस इज द प्लेस ऑफ कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण है। तो हम जाते हैं वृंदावन में, होते वो बांके बिहार की गली में ना, वो लस्सी अच्छी मिलती है, टिक्की अच्छी मिलती है, वहां पर गुलाब वाला फ्लेवर डालते हैं उसके अंदर, जाना ही चाहिए। वृंदावन जाओगे ना, वो लस्सी बिना मत आना, उसके बिना वृंदावन के अंदर पूरी नहीं होती है। अगर वहां नहीं गए तो वृंदावन जाकर क्या किया आपने? दिस इज आवर माइंड सेट, यू नो, वी वॉन्ट टू ऑलवेज एंजॉय। वहां पर जाकर भी बेस्ट खाने की चीज क्या है, बेस्ट पहनने की चीज क्या मिलती है, वो लाना मतलब हफ्ता यात्रा सफल सोचते। लेकिन उसी जगह पर भगवान भी बसे हुए हैं, आपका हृदय स्वच्छ होगा ना, आपको वो अनुभूति देंगे कि मैं यहाँ पर हूँ। तो जैसे ही वो विदेशी व्यक्ति ना, उनको क्या मानो, विदेशी व्यक्ति प्रवेश करते उनको अनुभव हुआ कि कृष्ण यहाँ पर है, दिस इज कृष्णस प्लेस। फिर जाना था उनको कुछ देर बाद में, फिर वो टाइम बहुत लंबी कहानी, टाइफाइड हो गया उनको, फिर वो एडमिट हो गए, फिर बहुत सारा लंबा समय गया, वीजा खत्म हो गया। उसके बीच वो घनश्याम बाबा को मिले, और वो घनश्याम बाबा ना इतने अद्भुत बाबा थे, वो राजस्थान से आए थे, और राजस्थान से बचपन में आए थे माता पिता के साथ में। वो एक राजा के पुत्र थे, राजा मतलब क्या, पूरा देश का नहीं, संस्थानिक ना, संस्थानिक, वो संस्थान हुआ करते थे, उनको राजा हुआ करते थे। तो भारत के इंडिपेंडेंस में वो सब संस्थानिकों को समाप्त करके पूरा देश बनाया गया सबको अच्छी तरह से। तो वो संस्थानिक के बेटे थे, और राजा और रानी उनको लेकर आए थे ब्रज में। तो ये ना उधर रह गए, माता पिता बहुत परेशान हो गए, बोला ठीक है बाद में आ जाएगा, लेकिन वो आए ही नहीं, और वहीं पर रह गए, फकीर बनकर रह गए। राजपुत्र थे वो, लेकिन फकीर बनकर रह गए। ऐसे ही ना एक बार जमुना जी के किनारे बैठे थे, और ऐसे ऐसे हाथ मट्टी में घुमा रहे थे, और फिर मट्टी में लिखते थे राधे राधे, और कुछ देर बाद उसको मिटाते थे, फिर वापस राधे लिखते थे। ऐसे ही बैठकर बहुत देर तक वो करते रहे। अभी हर बार राधे लिखेंगे और ऐसे करेंगे तो कुछ मट्टी निकल जाएगी ना उस तरफ, फिर राधे लिखेंगे, फिर करेंगे तो ना ठीक। ऐसे करते करते आखिरी बार एक बार जब ऐसा किया ना, तो ऐसा हाथ को ऐसा कुछ लगा, ऐसे हार्ड जैसे जो ये होता जमीन के अंदर, तो कैसे लगता, ऐसे लग गया उसको। तो देखा तो क्या है, कुछ नोकदार चीज थी उसके अंदर, पॉइंटेड। तो कुतूहल निर्माण हुआ, क्या है, जब खोदा ना तो राधा गोपीचंद वल्लभ की मूर्ति मान निकली उसमें से, राधा गोपीचंद वल्लभ। तो गोपीचंद वल्लभ का मुकुट का पॉइंट था वो, जो उनको हाथ को लगा था। अभी गोपीचंद वल्लभ कैसे मान पड़ा उनको, क्योंकि कृष्ण की मूर्ति के नीचे लिखा था गोपीचंद वल्लभ। इस अद्भुत तरह से उनको ये विग्रह प्राप्त हुए, क्योंकि साधारण चीज नहीं है, कोई जमुना में उनको विग्रह को क्या कहते हैं विसर्जन करके गया होगा कोई व्यक्ति, फिर धीरे धीरे वो लहरों के आने जाने से वो रेती के अंदर दब गए होंगे, फिर वो बाहर आएंगे होंगे, फिर यहाँ बैठे हैं, ठाकुर जी को प्रकट करना था अपने आप को, इनके लिए प्रकट हो गए। ऐसी सेवा करते थे, क्या कहते हैं उसको, रागानुगा, ऐसे भोजन लेके ना ऐसे उनको खिलाते थे। हमको नहीं करना चाहिए ऐसे, क्योंकि हम लोग उसके इतने योग्य नहीं है, ऐसी सेवा करते थे वो, बहुत ज़बरदस्त। उनके साथ हमारे अभी जो हमारे गुरु जी हैं, तभी जो रिचर्ड थे वो पहुँच गए हम, उनका काफी अच्छा संग्रह उनका, और इतना राधा रानी के कृष्ण में प्रेम था उनको घनश्याम बाबा का, तो बहुत सुंदर सेवा किया उनका। और काफी आप वो किताब कितने लोगों ने पढ़ी है, हाँ बाकी लोगों ने नहीं पढ़ी, वो पढ़िए जरूर आप, ऐसा एक पूरा सनसनीखेज मूवी है वो, चार घंटे का, पांच घंटे का, आप पढ़ेंगे तो पता नहीं, जब हॉलीवुड की मूवी निकलेगी ना तो एक ऑस्कर विनर मूवी हो जाएगी। ऐसे इसके अंदर इतने प्रसंग हैं, बहुत सुंदर। तो वो फिर एंड में जब घनश्याम बाबा का संग समाप्त हो गया, उनका मतलब निकलने का समय आया, तो घनश्याम बाबा ने कहा कि आप ना बरसाने जाओ, वहां पर निवास करो, राधा रानी आपको कृपा करेगी। क्योंकि भगवान को खोजते खोजते आए थे ना हमारे गुरुदेव वहां पर, तो बहुत सारा परिचय भी हुआ भगवान का, लेकिन उनका राधा रानी के धाम में आपका परिचय अच्छा हुआ। तो पैदल गए वृंदावन से, हम तो भी ढूंढते ना, कभी टेम्पो है, टैक्सी है, गाड़ी है, एयर कंडीशन सब देखते हैं हम लोग, अभी तो बहुत सुविधा हो गया आजकल, 1971 की बात कर रहे हैं। तो वो चले गए वहाँ पर, और शिव जी के मंदिर में गए, वहाँ पर दर्शन किया, और राधा रानी के मंदिर से जब भी वो मान मंदिर की ओर निकले, तभी रास्ता कच्चा कच्चा था, वो तो रास्ता हमारे सामने बना है, करीब 92-93 के आसपास बना है, मैं 71 की बात कर रहा हूँ। तो वो रास्ता जो था वो भी ऐसे कच्चा रास्ता था, लेकिन उस रास्ते में चलते समय, मान मंदिर तक चलते समय उनको बहुत अद्भुत अनुभव आए। हम भी बहुत बार चले रस्ते हैं, हमको कोई अनुभव नहीं आया, लेकिन नारायण जी को बहुत अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव आए। फिर उन्होंने वहाँ पर 6 महीना निवास किया मान मंदिर में, जहाँ पर मान बिहारी लाल निवास विराजते हैं। तो वहाँ पर उनको एक बार बहुत दस्त हो गए थे, और दस्त इतने दुखी मतलब इतने पीड़ित हो गए थे, उसमें सांप आए थे उनके सामने ऐसे, सांप ने बहुत देर देखा और चले गए। उधर एक गुफा है, नीचे उतरना पड़ता है ऐसे गोल गोल जाके, और गुफा में एक शिला है, वो शिला में राधा रानी रूट पर बैठा करती थी, वो अभी भी शिला है वहाँ, बहुत सुंदर, उसमें संत लोग भजन करते हैं, बहुत पावरफुल जगह है। तो ऐसा ही मान मंदिर का पहाड़ है, तो उसमें फिर वो रमेश बाबा जी महाराज थे, वहाँ पर 1952 से भजन कर रहे थे। और ऐसा स्थान है वो कि वो पहले देखो कैसा होता है ना, ठाकुर जी का स्थान होता है ना, जब कोई संत वहां रहता है तो वो स्थान भी अपना महात्म्य प्रकट करता है। तो भजन एक ही माध्यम है जिससे आपके अंदर की आध्यात्मिकता और आपके स्थान की आध्यात्मिकता दोनों प्रकट हो सकती है। अगर वो तीर्थ स्थान होगा तो वो तीर्थ स्थान का महात्म्य आपके लिए तब प्रकट होगा जब आप वहां प्रामाणिक भजन करेंगे तो, या उस स्थान पर किसी संत ने पहले भजन किया हो तो आपके लिए वो उस धाम की जो महिमा है वो आपके लिए प्रकट होगी। अदरवाइज क्या है, मट्टी है, गाय है, गदा है, बंदर है, जो जैसा है वैसा है, नथिंग ग्रेट अबाउट इट। आप बोलेंगे इतना गंदा क्यों है, साफ क्यों नहीं करता गवर्नमेंट, कुछ करता क्यों नहीं, ऐसा है बातें करते रहेंगे, और उस स्थान की महिमा जो है वो लुप्त रहेगी। तो वैसे ही कालांतर में क्या होता है ना, ये पृथ्वी का नियम है, कुछ समय आएगा महाप्रभु चैतन्य आए थे तो सब धाम का उद्धार किया गया था, तो कुछ समय ऐसे रहा लेकिन बाद में सब लुप्त हो गया। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु आए थे तभी वृंदावन धाम पूरा पुनः प्रकट किया गया था, लोकनाथ गोस्वामी, विवर्भ गोस्वामी उन्होंने जब आए थे तो सब जंगल ही जंगल था, कोई डिमार्केशन नहीं था। फिर अपने 6 गोस्वामियों ने फिर एक एक करके प्रकट किया, महाप्रभु जी ने राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट किया, ऐसे धीरे धीरे स्थान प्रकट हो गए। उसके बाद में फिर स्थान लुप्त हो गए, फिर कोई संत आए फिर उन्होंने प्रकट किया। वैसे मान मंदिर में एक समय था जिसमें केवल डकैत रहा करते थे, कैन यू इमेजिन, राधा रानी की मान सली है वो। अभी आप ना बाकी सब कुछ हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन मान लीला समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही एक प्रकार का विचित्र भाव है। राधा रानी का मान करना, दुष्ट का मनाना, एक 8 प्रकार के प्रेम के लक्षण होते हैं, उसमें से मान एक बहुत अद्भुत प्रकार का लक्षण है। 8 प्रेम के लक्षण में राग, अनुराग, रति, प्रेम और बहुत सारे उसमें है। मान उसमें बहुत उत्कट है, और जहां पर ये उत्कट लीला बरसाने का कि पूरा पूरा बरसाना ही ब्रिज में बहुत स्पेशल है, वो बरसाने के अंदर भी मान मंदिर बहुत स्पेशल है, और मान मंदिर में मान लीला सबसे स्पेशल है, तो समझना मुश्किल है। और इस जगह पर क्या हो रहा है, डकैत रहते हैं, और क्या करते हैं, उनका डकैतों का चोरी का सामान है वो वहां पर स्टोर करते हैं। तो यू कैन इमेजिन द कॉन्ट्रास्ट, क्या वहां का महात्म्य और क्या वहां हो रहा है। ऐसे स्थिति में रमेश बाबा जी वहां पर 1952 में पहुंचे और भजन करते थे अकेले, उनको तो जंगल में भजन करने की आदत थी पहले से, चित्रकूट के भजन में भजन किया था उन्होंने पहले, जंगल में रहना उनको अच्छा लगता था। राधा रानी के मान मंदिर की स्थली है तो रह गए वहां पर, तो डकैतों ने आकर उनको कई बार धमकाया, जान से मार देंगे, क्योंकि वो भजन करते थे वहां पर, तो डिस्टर्बेंस है ना उनके लिए, वो चोरी करके सामान लेके आ रहे, कोई आके साधु भजन कर रहे हैं तो कोई संगी भी आएगा तो फिर हमारा भांडा फूट जाएगा, इसलिए वो परेशान हो गए। ऐसे आए बंदूक तान कर, चलो बाबा निकलो यहां से, बोले नहीं हम भजन कर रहे हैं, राधा रानी के धाम में भजन कर रहे हैं, जान से मार देंगे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, वेरी सिग्निफिकेंट जवाब दिया, बोला मरने के लिए तो आए हैं यहाँ पर। एक साधुओं का भाव कैसा रहता है, वो धाम में ऐसा एंजॉय करना चाहते नहीं है, दे वांट टू जस्ट लिव देयर लाइफ देयर, जीवन भर रह के भजन करना है और जीवन वहीं त्याग देना है। तो कहते हैं मरने के लिए तो आए हैं, अभी सबसे बड़ी धमकी किसको आप क्या दे सकते हो, जान से मारने की। तो बोला मरने के लिए आया, तो फिर वो खुद चले गए, वही रह गए उधर, डॉक्टरों को जाना पड़ा। देखो सबसे बड़ा निर्भय किसको कह सकते हैं आप, जो मौत को नहीं डरता है, सब लोग मौत को डरते हैं, लेकिन जो वास्तव में मौत से डरता नहीं है उसे दुनिया भगवान भी डरते हैं, ब्रह्मा भी डरते हैं उनसे, तो फिर डके चले गए। और धीरे 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 भजन का प्रभाव देखो, सब डके चले गए, सब उनका स्टॉक चला गया, सब कुछ चला गया, और फिर मान मंदिर में फिर वापस भजन करने लगे लोग, भक्त आने लगे, फिर मान मंदिर कुछ सब डेवलप हो गया। फिर वो ना वो गहर बने, गहवा गहवापन क्या चीज़ है, बरसाना जो है ना वो चार चीज से बना है, खोर हिरक गिरी गहवर। क्या बताया मैंने, खोर यानी रास्ता छोटा सा, सांकरी खोर, एक हो गई खोर, ऐसे बहुत पतली गलियां हैं उधर, उसमें फेमस गली कौन है, सांकरी गली। फिर खिरक, खिरक यानी गाय को पानी पिलाने की जगह, मतलब जलाशय। और तीसरी चीज है गिरी, गिरी यानी भानुगढ़, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, मोरकुटी, ये सब अच्छी अच्छी पर्वत की चोटियां हैं। राधा राधा कहिए कहिए, नित्य प्रति चढ़कर जाइए जाइए, रोज चढ़कर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, राधा राधा पुकारना चाहिए, ऐसे प्रथा है। तो चार गिरी है वहां पर, और लास्ट में क्या कहा है, खोर खिरक गिरी और गहवर। तो गहवर क्या है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्या है उसका, भावनाओं की उत्कटता, मराठी में कहते ना गहवर, मतलब जिसको कैसे कहे मराठी में भी बोलते ना उत्सम बड़ून आल, उत्सम बड़ून, मतलब जब भाव ऐसा प्रेम से निकलता है ना बाहर, तो उसको गहवर कहते हैं। तो वो गहवर वन है वहां पर, और नाम तो परफेक्ट है उसका, क्योंकि उसमें सबसे अंतरंग पूरे बरसाने का भी अंदर का स्थान है वो, जिसमें राधा रानी की उत्कट लीलाएं प्राइवेट लीलाएं होती है। वृंदावन भी ना तीन प्रकार के होते हैं, एक वृंदावन है जहाँ पर गाय चराते हैं भगवान, सब कुछ गैया चलाते हैं, ग्वाल बाल रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, ओपन स्पेस है, वहाँ जानवर भी आते हैं, मोर भी आते हैं, पंछी आते हैं, गाय आते हैं, बैल आते हैं, कृष्ण आते हैं, सफा आते हैं, राक्षस भी आता है, सब कुछ होता है। एक होता है कुंज, यानी उसको दरवाजे नहीं होते, वो भी फॉरेस्ट है लेकिन ऑल साइड ओपन, एनीबडी कैन गो, एनीबडी कैन गो। एक होता है निकुंज, निकुंज में केवल गोपियां और कृष्ण मिलते हैं, और वो सब जगह से बंद होता है, एक सब बंद है, एक ही दरवाजा खुला है, ऐसे एक ही दरवाजा खुला रहता है, उसमें एक गोपी खड़ी रहती है दरवाजे पे, और जो उसमें जाने के लिए योग्य है उसको ही एंट्री मिलती है, वो भी केवल फीमेल्स, ओनली कृष्णा इज अ मेल। तो निकुंज है, तो उसके आगे एक निवृत्त निकुंज है, उसमें केवल गिनी चुनी गोपियां ही जाती हैं, सब गोपी जा सकती हैं। और एक निज वृंदावन है सबसे अंदर, जिसमें केवल राधा कृष्ण ही जाते हैं, कोई सखी जाती नहीं, उसमें से है वो गेवर बन लास्ट वाले में से। और वहां पर इतने गुप्त स्थान है, आज भी राधा रानी के मान मंदिर के नीचे सिड्डी के नीचे बहुत सारे गुप्त रासमंडल है, जहां पर राधा रानी कृष्ण अकेले राष्ट्रपति करते हैं, बाकी प्रकट रासल बहुत सारे हैं, लेकिन वहां पर गुप्त अंदर बहुत सारे छुपे हुए हैं। आप जाएंगे कभी घूम के अंदर तो आपको बहुत सारे रासमंडल मिलेंगे। तो ये गहवर बन जो है, ये गहवर बन में बहुत अच्छी कोयल कुहू कुहू करती है, सखियां सजाती हैं उनको, ऐसे ऐसे रस्ते हैं अंदर, बहुत सघन वृक्षावली है, सब कमान पूर्ण है, और उसमें से बेलियां बहती रहती है ऐसे ही, और राधा रानी को हाथ पकड़कर कृष्ण प्रवेश कराते हैं और उसको बेलियों को सवारते हैं। लता बेली द्रुम को सवारा करेंगे, यानी लता बेली उसको उठाकर रास्ता बनाना, चले जाना, ऐसे अंदर जाते, तो अंदर सब बहुत सुंदर व्यवस्था होती है। तो वो गहवर बन के उन्होंने सब लोगों ने लकड़ी तोड़ करके सब नष्ट कर दिया, इतना सुंदर स्थान। तो उन्होंने 46 साल संघर्ष करके उस गहवर बन इलाके को वन विभाग में कर दिया, सुरक्षित कर दिया उसको, क्योंकि अगर नहीं करते ना तो पूरा वहां पर सुनसान जमीन हो जाती, सब सघन वृक्षावली सब खत्म हो जाती। तो ये शुरू कहां से होता है, राधा रानी के मंदिर से लेकर पूरा बरसाना, और आगे चित्रा सखी का गांव है, चित्रा सखी का गांव का नाम क्या है, चिकसोली। तो चिकसोली जब एंड होता है तो पूरा ये एरिया को गहवर बन के थे। उस वन में बचपन में राधा रानी ने सारे पौधे पेड़ जितने भी छोटे वृक्ष बड़े वृक्ष विशाल वृक्ष जितने भी वृक्षावली है वो सब राधा रानी ने वहां पर लगाई है, अपने हाथों से लगाई है, उसका हाथों से सिंचन किया हुआ है। तो जिस प्रकार से मायापुर राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है, उस प्रकार से गहवर बन भी राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है, एवरीथिंग मेड बाय हर ओन हैंड, उसका सिंचन और पालन पोषण सब राधा रानी ने किया है, उनका बहुत ज्यादा प्रिय वन है। और बचपन में राधा रानी वेलियों के साथ में कृष्ण वृक्षों के साथ विवाह करते थे, वृक्ष के साइड में कृष्ण और वेलियों के साइड में राधा रानी, और राधा रानी और कृष्ण मिलकर वेलियों का विवाह वृक्ष से कराते थे, ऐसी जगह है वो। तो समझने में मुश्किल है ना, ऐसा गुड्डा गुड्डी का समझ सकते हैं, ये तुम्हारी गुड्डी मेरा गुड्डा विवाह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लीला ऐसी अद्भुत लीला है, वो घेवर बने ऐसी लीला है कि वो पेड़ भी वृंदा देवी से बात करते हैं और वृंदा देवी उनको बताती है कि आज की लीला में आपको क्या करना है। कोई जा नहीं रहा अंदर ना, अभी कोई गोपी नहीं जा रही है, लेकिन वृक्ष तो वही है ना, वृक्ष तो वही खड़े हैं, तोता मैना कोयल सब अंदर है, मनुष्य भी कोई नहीं जा रहा है। तो तोता मैना कोयल वृक्ष वेलियों को वृंदा देवी समझाती है, क्योंकि वृंदा देवी चित्रा गोपी इन दोनों को पक्षियों की भाषा भी आती है, तो उनसे संवाद करते हैं, उनको उनका रोल क्या है बताते हैं। तो समय पर वो वृक्ष अपनी डाली ऐसे लुकाएगा, समय पर फूल ऐसे पहुंचा देगा, समय पर फल पहुंचा देगा। हाँ, आप कैसे देते हो ना प्लेट में, ऐसे पेड़ डायरेक्टली देते हैं आपके सामने एकदम से फांदी आ जाएगी, ऐसे काट के खा लो उसको। ऐसा ब्रज है, ब्रज का हर चीज चेतन है, और हर जो पेड़ है ना वो तीन प्रकार का उसका काम है। एक जो पेड़ है वो स्वयं राधा रानी है, मतलब या तो वो स्वयं राधा रानी है, जितने भी पेड़ है वृंदावन में, या तो वो स्वयं राधा रानी का स्वरूप है, राधा रानी सब लता पता बनकर रहती है वहां पर। सेकंड, साधु और ऋषि वहां पर पेड़ बनकर जन्म लेते हैं तप करने के लिए, और पेड़ों के अंदर ना बहुत ज्यादा शक्ति होती है, पेड़ों के अंदर जो शक्ति हमारे अंदर नहीं होती, पेड़ के अंदर होती है। पेड़ की, पेड़ जहां खड़ा होता है ना, वहां पर क्या चल रहा है वो सारी चेतना पेड़ स्वीकार कर लेता है, और आप जाएंगे वहां पर तो वो चेतना आपको देता है। तो अगर पेड़ के आसपास बंबई में समझो शराब पिया जा रहा है, डिस्को किया जा रहा है, व्यभिचार किया जा रहा है, नाचना शराब नाच कर रहे हैं, तो नेगेटिव वाइब्रेशन से वो पेड़ सिकुड़ जाते हैं, ये रिसर्च की बात है भाई देवी। और वो पेड़ अगर धाम में है तो पेड़ में इतनी शक्ति होती है कि धाम में वो पेड़ वहां के नित्य लीला का दर्शन करते रहते हैं। जस्ट इमेजिन कि व्हाई डू द साधुज वांट टू बिकम ट्रीज, क्या लॉजिक है उसके पीछे। आप पादप बनेंगे, आपको चलने को नहीं होगा, पैर से आपको जमीन से खाना खींचना पड़ेगा, और जो भी है वही का वही है, धूप सहन करो, सर्दी गर्म सहन करो, कुछ कुछ भी नहीं कर सकते, आप वही खड़े हो। फिर भी साधु लोग ऐसा तो नहीं बोल रहे कि हमको गाय बननी है, गाय भी बनते हैं वो, ऐसा नहीं, लेकिन पेड़ बनने का ज्यादा सुना है हमने। क्यों? क्योंकि पेड़ बनने के बाद में पेड़ के रूप में जो नित्य लीला आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, वो पेड़ देखते रहते हैं, ही कैन सी, और वो एब्सॉर्व करते हैं उसका भाव। इसलिए गुरुदेव हमारे क्या बताते हैं कि धाम में जब जाएंगे ना तो पेड़ के नीचे बैठकर कथा करो, अपने आश्रम के हॉल में बैठकर कथा मत करो, धाम में जाकर उसके कोई पेड़ ढूंढो आप, कोई भी अच्छा वाला, वहां बैठकर आश्रम लगा कथा करो, क्योंकि वो पेड़ जो है ना वो आपका एंटीना है, वो आपको कनेक्ट करेगा पूरा, और आपके तरफ से आपके मुख से कथा बुलवाएगा अच्छी तरह से, वो आपके लिए रिचार्ज सेंटर है, जो भक्त लोग वहां कथा करने जाते हैं उनके रिचार्ज सेंटर है। एक बार नासिक की यात्रा मैंने अरेंज की थी और पूरा कथा मैंने आश्रम के हॉल में करने का प्लान किया था, फिर दर्शन करने का प्लान किया, अचानक मुझे महाराज मिले और पूछने लगे, ओके स्वरूप कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ लेके जाओगे, मैंने सब बताया उनको, बोले कथा कहाँ करोगे, मैंने बोला बड़े गौर से बताया मैंने कि मैंने आश्रम के अंदर पूरा कथा का इंतजाम किया है, आराम से कथा करेंगे फिर घूमने जाएंगे, सब कैंसिल करो, सब कैंसिल एवरीथिंग, हर जगह पे जहाँ पर पेड़ होगा वहाँ बैठकर कथा करोगे आप उस जगह की कथा। उसके बाद में मैंने एक, कब की बात है पता है आपको, 2006 की बात है ये, तो तब से जितनी भी यात्रा मैंने की है हर कथा में पेड़ के नीचे बैठ के करता हूँ, या तो नदी किनारे बैठ के करता हूँ, मतलब धाम में कथा करता हूँ। तो ये बात सब वहां से निकली कि ये पेड़ जो है ना वो एक तो राधा रानी है, एक तो ऋषि मुनि है, नहीं तो कौन है वो, कल्प वृक्ष है। तो ब्रज के ऐसे पेड़ जो है ना वो जहां पर हर कर्ण जो है वो चिंतामणि है, हर पेड़ कल्प वृक्ष है, ऐसे ब्रज की महिमा है। हर गाय जो है वो कामधेनु है, सुरभि, तो ऐसे पेड़ों से वो सघन वृक्षावली है घेवर मन की, तो वो उन्होंने बचाया। हाँ, रमेश बाबा ने संघर्ष करके 46 ईयर संघर्ष किया, और वहां पर हमारे गुरुदेव रहे 6 महीने हमारे साथ। वहां पर एक पीछे गांव है मानपुर, तो मानपुर में जाकर वो भिक्षा करते थे और भिक्षा लेकर ऊपर चढ़ते थे पहाड़ पर। अभी तो अच्छी सीढ़ी बनी हुई है, जब हम लोग भी गए तभी भी सीढ़ी नहीं थी। अभी 4 सीढ़ी छोड़कर अगली सीढ़ी है ना, वैसे पत्थर हुआ करता था, हम चढ़ते रहते यंग थे तो प्रॉब्लम नहीं था उसमें। तो भिक्षा करके ऊपर जाना है और फिर बाबा जी वो भिक्षा को अमनिया यानी भोग मानकर उसको दोबारा ऑफर करेंगे। ब्रज का नियम ऐसा कि जो भिक्षा करेंगे और खाए प्रसाद भी होगा, फिर भी आपके पास आया तो आप उसको इकट्ठा करेंगे, फिर कृष्ण को भोग लगाएंगे और फिर उसको खाएंगे, फिर भोग लगाएंगे और फिर वो बांट कर 3-4 साधु खाएंगे। और पानी चाहिए, वापस नीचे जाना है, 2 बकेट लेकर उस पहाड़ में चढ़ के आना है। कैन यू इमेजिन दिस? ऐसे वो 6 महीने वहां पर रहे हमारे गुरु महाराज, तो कई प्रकार के अद्भुत अनुभव वहां पर आए। तो एक अनुभव ऐसा है कि रमेश बाबा जी एक बार सो रहे थे तो वो डंडा लेके सो रहे थे। उन्होंने कहा डंडा क्यों ले रहे हो? उन्होंने कहा कि खबर मिली है कि एक शेर आया है। क्या खबर मिली है? कि शेर आसपास घूम रहा है। तो डंडे से क्या होगा? डंडे से क्या होगा? शेर आए तो डंडे से क्या होगा? आप सोते होंगे, डंडा क्या करेगा सोते बाद विचार। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारी तरफ से हमको अपना काम करना है, बाकी राधा रानी करेगी। You understand? You do your job, rest राधा रानी will do। तो फिर 6 महीने में वहां पर परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक साक्षात्कार हुए। और जब निकलने का समय आया तो उन्होंने ये निश्चय किया कि इसी स्थान ने मुझे राधा रानी के कृपा से बहुत साक्षात्कार दिए हैं, तो इस स्थान में कुछ अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ भविष्य में, इस स्थान के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए मैं अच्छी सेवा करना चाहता हूँ। और वो 71 में फिर चले गए। गए कभी थे? दिसंबर 1971। दिसंबर 2021 को 50 साल इसको पूरे हो गए। ओके, और दिसंबर 21 को 50 साल पूरे हो रहे हैं तो उसका महत्व क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब वो निकले थे उन्होंने सोचा था कि मैं कुछ करूंगा, फिर वो अमेरिका चले गए, फिर उनको कहा गया कि आप अभी इसके बाद कभी इंडिया नहीं जाओगे 71 में। तो 86 तक उनको वापस कभी इंडिया जाने को मिला नहीं। वृंदावन के जंगलों में भगवान की सेवा करते रहे, पहाड़ पर सेवा करते रहे, दलदल के अंदर, तो अद्भुत कहानी। तो 86 में वो वापस आए, तभी भी वापस जाने के लिए आए थे। अचानक उनको कहा गया कि आपको इधर रहना है, उनकी अथॉरिटी ने बताया इधर रहना है आपको, यहाँ का संभालना है आपको। तो वो 86 में सबसे पहली यात्रा वृंदावन लेकर गए थे। और हमको क्या बताया उन्होंने, मथुरा स्टेशन पर हमको रिसीव किया। किसने? यात्रा एडवांस पार्टी ने नहीं रिसीव किया, परम पूज्य राधानाथ महाराज खुद खड़े थे वहां पर प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को रिसीव करने के लिए। हम लोग केवल 22 जन थे, लड़के और लड़की मिलकर, विद्यार्थी मेडिकल स्टूडेंट वगैरह 22 जन थे। उनको हमने, महाराज ने हमको रिसीव किया और स्टेशन पर ही प्रवचन दिया, वेलकम वेलकम एड्रेस। अभी तो पंडाल में होता है ना वेलकम एड्रेस, एक शाम को होता है एक दिन पहले। तो हमारा वेलकम एड्रेस मथुरा स्टेशन पे हुआ, सीमेंटेड प्लेटफॉर्म, अभी तो टाइल प्लेटफॉर्म हो गया ना, सीमेंटेड प्लेटफॉर्म था, उबड़ खाबड़। क्या बताया उन्होंने? बहुत सारी बातें बताई वृंदावन के बारे में, लेकिन एक बात बताई कि ब्रज में जाते समय हृदय के अंदर के कोने में राधा रानी की कृपा की निरंतर याचना करते रहनी चाहिए। You have to constantly pray for the mercy of Radha Rani at the bottom of your heart, constantly throughout your stay of Brajbhumi till you go back. क्योंकि ब्रज में रहने का रहस्य जो है वो कई प्रकार का हो सकता है। आपका शरीर गया, टिक्की खाई, लस्सी पी, अपने यहाँ पर खरीदी किया, लोही बाजार गए, बहुत सारा सामान खरीदी किया, हरे कृष्णा टी शर्ट खरीदी किया, हरे कृष्णा माला खरीदी, बहुत सारा कर सकते हैं आप, वो एक प्रकार की यात्रा है। लेकिन आत्मा प्रवेश अगर ब्रज में होना है तो राधा रानी की कृपा के बिना नहीं हो सकता। वहां पर तो कृष्ण भी उनकी कृपा के बिना प्रवेश नहीं कर सकते, हमारी क्या कथा, सोचो आप। इसलिए वहां पर कोई कृष्ण नहीं बोलता है, वो सब द्वारका में और कौन से स्थान है, बहुत सारे जय श्री कृष्ण वो सब जगह वहां चलता है। लेकिन वृंदावन धाम में प्रकृति क्या बोलते हैं? राधे राधे, जय श्री राधे। क्योंकि ये सब जानते हैं कि यहाँ पर कृष्ण कृष्ण बोलने से ना कृष्ण देखते हैं ना और कोई देखता है, राधे राधे कहने से कृष्ण भी देखते हैं राधा भी देखते हैं, इसलिए सब लोग राधे राधे पुकारते हैं। ये रहस्य की बात हो गई ना। रिक्शा वाला भी हमको क्या लगता था, राह दे मतलब रास्ता दो ऐसा लगता था पहले हमको, क्योंकि ट्रेन टांगा वाला भी राधे राधे बोलता है, तो क्या रहा मतलब वो हॉर्न नहीं था ना उस समय, तो राह दे वो भी सही है क्योंकि वही राह देती है हमको भक्ति मार्ग में जाने के लिए, है ना। तो ये रहस्य उसका। तो 86 में जब हम लोग पहले गए तो ये यात्रा हुई, हम लास्ट में बरसाना पहुंचे। ये बरसाने का महिमा देखो आप, कैसा धाम है वो, घूमते घामते गए। अभी कैसा ना, अभी कैसे यात्रा में होता है, पूरा ब्रेकफास्ट उसमें, एक दिन इटालियन, एक दिन क्या पता नहीं क्या क्या, बंगाली, एक दिन साउथ इंडियन, एक दिन नॉर्थ इंडियन, एक दिन पराठा, एक दिन सांभर इडली, ऐसा सब यात्रा मेन्यू होता है आजकल, मालूम है क्या। और पूरा धुआंधार आनंद रहता है उसके अंदर। उस जमाने में कैसे होता हूँ मैं, उस जमाने में नो इंतजाम ऑफ खाना, वो जमाने में यात्रा मतलब क्या, सिर्फ चलना है आपको, एक रूम रहेगा रहने के लिए आपको, सब लोग खचाखच भरे होंगे उसके अंदर, एक बॉडी टेकने के लिए जगह होगी और बाकी आपको चलना है बस। उसमें टेम्पो से चलना है, नो प्लानिंग, रिक्शा बस कोई प्लानिंग नहीं, कोई भी ऑन द स्पॉट रागन होगा प्लानिंग करेंगे, चलो टेम्पो आ रहा है चलो बैठ जाओ सब लोग चलो यात्रा। ऐसा करते करते कहीं मौका मिला तो याद करते रहेंगे, महाराज लंच का क्या करेंगे, अगली शाम में देखेंगे, नेक्स्ट प्लेस विल सी, महाराज भूख लग रही है महाराज, नेक्स्ट प्लेस। तो वो दिन क्या हुआ ना, नंदगांव गए हम लोग, उधर भी खाने का इंतजाम नहीं हुआ, 4 बज गए यात्रा शुरू कब मालूम होती है यात्रा, 4:30 मंगल आरती में सबको आना है, तो मंगल आरती होते 5:15 बज गए ना, तुरंत वहां से निकलना है अंधेरे में, तो उधर कुछ ब्रेकफास्ट नाश्ता वास्ता कुछ नहीं होता है, चलते रहने का कथा सुनते रहना बस, महाराज साथ में चलेंगे अपने कथा सुनते रहना। तो ऐसे करके 4 बजे हम बरसाना पहुंचे, ऐसी भूख लग रही थी ना, 20-20 साल के लड़के थे हम लोग, सब लोग प्रचंड भूख लग रही थी, घर में घुसे सब लोग सो रहे थे घर में, पूरा किचन वन साफ करके, जैसे हम लोग गए फट करके उठे और सब रसोई में भागे, तुरंत वो चूल्हे का वो मट्टी का चूल्हा जलाया, फटाफट आटा गूंथा, ऊपर से भी सब्जी सब खत्म हो गई, तो थोड़े अचार के डब्बे निकाले पूरे ऐसे सब लगाए, 4-5 प्रकार के अचार, और धड़ाधड़ हाथ की रोटी बनाना शुरू हो गया। और 22 लोग तो बैठे थे, भूखे ही थे, सबको गरम 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 रोटी खिलाई, और 1 घंटा दिला चली, 1 घंटे तक सब लोग खा रहे, 1, 2, 3, 4 चलते रहे, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो भूख लग रही जबरदस्त, और वो बड़े प्रेम से खिला रहे हैं, ना जान ना पहचान, एक ही पहचान का आदमी है वो राधाना स्वामी, क्योंकि वो 6 महीने 15 साल के पहले वहां रह चुके थे, इनके घर में भिक्षा करते थे और काफी उनका सम्मान था उधर, तो उनको देखकर सबको रोटी खिलाई, फिर हम लोग दंग रह गए, अननोन पीपल आर कमिंग, 22 इन नंबर, ये है बरसाने के ब्रजवासी, कभी भी आओ और खाना खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका परिचय देने की जरूरत नहीं, आपको आईडी आधार कार्ड नॉट रिक्वायर्ड, यू आर हंगरी कम बैठो रोटी पाओ, आते ही पहले क्या बोलेंगे बैठो रोटी पाओ, आज भी पहले जाएंगे पहले क्या बोलेंगे रोटी पाओ, फिर रोटी खिलाएंगे। अभी तो मशीन आ गए, पहले तो हाथ की रोटी बनाते, और ब्रज में अभी भी रिवाज है कि एक होता है बेल के रोटी बनाते ना ऐसे, आप लोग बेल बनाते गांव में ऐसे बनाते रोटी, ऐसे 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 करके बनाते, बहुत सुंदर, फिर उसको ना सीधे चूल्हे में डालते हैं, और उस पर कंडा रहता है गाय का प्योर कंडा, उसके अंदर उसको ऐसा खड़ा करते हैं, ऐसा फुलाते हैं, ऐसे खड़े करते हैं ऐसे फूल जाते हैं, फिर उसको निकालते हैं, तब इतना मक्खन डालते हैं, लो इट्स लाइक अ बिस्किट यू नो, एकदम कुरकुरी क्रिस्प कर्रा रहता है, तो बहुत सुंदर। तो जब हमारे प्रियजन आते हैं ना कोई घर पे, तो वो लोग हाथ की रोटी बनाते, बाकी लोगों को बेल के खिलाते, तो ये महाराज जी को हाथ की रोटी खिलाते, उन्हें देखा उनका प्रेम, महाराज जी कहते हैं कि ये लच्छो दीदी का हाथ का रोटी खाना मतलब विश्व में सबसे बेस्ट प्रसाद यही है, इनके हाथ की रोटी खाना, और ऐसे महाराज जी ने वहां पर खाना बनाया हुआ है, वहां महाराज ने रोटी बनाई हुई है, उनको महाराज ने खिलाया हुआ है, बहुत सारा चीज। तो उसके बाद भी हम वहां पर गए, फिर रमेश बाबा जी ने उन्हें कहा कि उनको गाने के लिए बताऊं, तो मैं गया हिंदी में बताया कि महाराज जी कह रहे हैं आप गाओ, तो एक पुराना सा बाजा निकाला, ऐसे एकदम बाजे को देखे ना आपको लगेगा कि बाजा बजेगा कि नहीं बजेगा, ऐसा बाजा था इतना पुराना, उन्होंने जैसे खोला ना उसको, क्या बजाया उसको, लगा बाप रे इतनी कला थी, वो बचपन में भारत में गोल्ड मेडलिस्ट थे वो संगीत सभा में, 12 साल की उम्र में ही वॉज गोल्ड मेडलिस्ट इन म्यूजिक. ऐसे बहुत महान संगीतज्ञ थे वो. ऐसे तो भजन गाए ना, मैं तो मेरी सूझबूझ ही भूल गया उस समय. मेरे को पता ही नहीं था मैं कहाँ पर हूँ. ऐसे में हवाओं की लहरों में लहर रहा था उस समय. तो संत के अंदर वो शक्ति होती है कि जीव के हृदय की भक्ति की तार छेड़ने की शक्ति संत के हृदय में होती है. सबके तार छेड़ दिए उन्होंने उस दिन. सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए. राधा रानी ये अपरिचित व्यक्ति, उनका ऐसा परिचय कराया उन्होंने कि आज तक वो परिचय हृदय में फिट है. इसलिए संत का संग करना चाहिए. संत जो है ना वो अमितो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली धाये तव पाचे पाचे. कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारी शक्ति आचे. तुम्हारे अंदर शक्ति है कि हम कृष्ण को आप दे सकते हो. जैसे राधा रानी और कृष्ण को देने की शक्ति संत में होती है. राधा कृष्ण कभी स्वयं अपने आप को आपको अर्पण नहीं करेंगे, संत के माध्यम से ही अर्पण करेंगे. सारे साक्षात्कार सारी अनुभूतियां उसकी चाबी सब संतों को देकर रखी उन्होंने. और जिसको देना है उसके साथ में वो चाबी खोल देते हैं उसके लिए. जिस पर रीत जाते हैं वो चाबी खोल देते हैं. ऐसे ये बता रहा था मैं कि जो मान मंदिर डकैतों का जगह था, इस संत ने आकर वहां पर भजन किया, इसलिए आज वो इतना वाइब्रेंट जगह हो गया. आप जाएंगे तो आपको लगेगा कुछ है. सब जगह ब्रज है लेकिन कुछ जगह पर आपको लगेगा कि कुछ है यहाँ पर शक्ति. क्योंकि कुछ जगह पर सब जगह ब्रज है लेकिन कुछ जगह पर डकैत अभी भी रहते हैं, मार झाड़ करते हैं अभी भी. सब जगह सब कुछ होता रहता है. तो उस स्थान का महिमा आपको कोई पता नहीं चलेगा. क्योंकि जिस जगह पर पवित्र स्थान पर आप भजन करते हैं वो स्थान व्यक्ति होने के नाते साक्षात्कार को रिवील करता है, प्रकट करता है. और जिस जगह पर पवित्र स्थान में कोई व्यक्ति गलत काम करता है, चार नियम तोड़ता है, पाप करता है, उस स्थान जो व्यक्ति है वो स्थान व्यक्ति जो है अपनी महिमा को लुप्त कर देता है. तो एक तरह से ऑर्डिनरी प्लेस. इसलिए धाम में हमेशा संतों के संग में जाना चाहिए और धाम में जाकर कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए. सत्संग नहीं करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए. तो फिर वो धाम संतों के माध्यम से उसकी महिमा हम तक प्रकट कर सकता है. इसलिए सबसे पहला परिचय किसका हुआ? हमारा मान मंदिर का हुआ. उसके बाद में फिर हम जाने अरे विलासगढ़ भी यहाँ पर है, अरे दानगढ़ भी है. और आज भी विलासगढ़ के बारे में इतना क्यों पता नहीं है? क्योंकि वहां पर कोई संत नहीं है, वहां पर कोई बजाने वाला भी नहीं है. तो हर जगह पे बताने वाला कौन चाहिए? साधु चाहिए. तो फिर वहां पर एक गैवर कुंड है, गैवर बन के बीच में जितने भी पेड़ महत्वपूर्ण बताए गए ना अपने शास्त्र में, कौन से मुझे बताइए? आप बताइए कौन से पेड़ स्पिरिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए. हाँ, अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ और वटवृक्ष बरगद का पेड़. अश्वत्थ कृष्ण का स्वरूप है, बरगद शंकर जी का स्वरूप है. और बोलो जोर से बोलो. कदम, कदम भी राधा रानी का स्वरूप है. और तमाल वो कृष्ण का स्वरूप है. फिर औदुम्बर यानी गुलेर का पेड़ वो एक है. फिर नीम का पेड़ और कौन सा? आमला का पेड़. और हाँ केले का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे कुछ अराउंड 10-12 पेड़ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं. वो सारे पेड़ वहां पर गैवर कुंड के आसपास और कहते हैं कि उसकी गहराई पाताल तक पहुंची हुई है. अभी वो देखने का काम है, सब रिसर्च वाला काम है. तो वो गैवर कुंड जो है वहां पर राधा रानी रोज 64 सखियों के साथ विहार करती है उस जल कुंड में. और उसके सामने मान मोरकुटी है, एकदम ऊपर है ऐसे. वहां से ग्वाल बाल उनको डिस्टर्ब करने के लिए लड्डू फेंका करते थे उनके. आज लोग टमाटर फेंकते हैं, अंडा फेंकते हैं, लेकिन ये लीला में बहुत स्वादिष्ट लड्डू फेंका करते थे ऊपर से. ऐसी लीला है वहां की. तो ये गैवर कुंड ना वो देवताओं को प्रसन्न करने वाला स्थान है. वहां पर एक मंत्र है उसका, प्रणाम मंत्र लिखा है कि देवताओं को भी साक्षात्कार कराने वाला स्थान है. यहाँ पर देवता भी आकर अपना रिझते हैं वहां जाकर. और उसके ऊपर सीढ़ी है मान मंदिर की. तो बरसाने के भक्त कैसे हैं, ब्रजवासी कैसे हैं, उसका हमको वहां पर कैंप से अनुभव हुआ. और एक आपको बताता हूं, सबको बताना चाहता हूं कि एक बात है यात्रा करना और दूसरी बात है सेवा करना. बीच में हमारी बात चल रही थी कि 9 करोड़ लोग आते हैं, कुछ लोग सेवा करते हैं. तो महाराज जी जब 86 में आए थे, फिर हमने दोबारा एक बार झूलन यात्रा में यात्रा की. और जुलंद के बाद में हम लोग ऐसे ही बहुत एक बार गए थे, तो उस समय तक हमारे यहाँ पर कैंप शुरू हो गए थे। तो हम जब वहाँ पर चले गए तो उन्होंने पूछा आप लोग क्या करते हो, तो हमने कहा हम लोग कैंप करते हैं, गाँव गाँव में सेवा करते हैं, हरिनाम करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, ऑपरेशन करते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा ऑपरेशन करते हैं, किस चीज़ का ऑपरेशन करते हैं? मैंने कहा आंखों का करते हैं। कितना करते हैं? 25 लोगों का करते हैं एक कैंप में। अरे यहाँ पर करो, हमारे बरसाना में इतनी जरूरत, सब लोग अंधे हो रहे हैं यहाँ पर, मोतियाबिंद का बहुत ज्यादा यहाँ पर इलाज नहीं है, कुछ हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ पर क्यों नहीं करते? तो हम लोग ने महाराज को देखा, क्या बोलना चाहिए, हाँ बोलना कि ना बोलना चाहिए? क्योंकि वो लेकर आए, अभी मुंबई में कैंप कर रहे हैं, यहाँ पर कैंप करना मतलब 1500 किलोमीटर दूर है यहाँ से मुंबई से। तो महाराज ने कहा हाँ करना चाहिए, वी शुड डू इट। एक बार हायर अथॉरिटी सेंक्शन दिया, मतलब यस वी कैन डू इट। तो मैंने फिर ऑर्गेनाइज किया 92 में आंखों का। तो देखो ब्रजवासियों की कितनी महानता है, जिनके घर में 4 बजे घुसकर रोटी खाई थी बिना, पहले उसमें फोन नहीं था, लैंडलाइन भी नहीं थी उस समय, लैंडलाइन होना भी एक प्रेस्टीज का था, हमारे घर में लैंडलाइन है, ऐसा एक समय था वो। तो ऐसे ही कोई फोन करने का सवाल नहीं, आ रहे हैं रोटी खाए रखो, जिसके घर में जाकर ऐसे ऐन मौके पर रोटी खाई थी पेट भर के, उन्होंने कहा खा रहे हैं हम लोग कैंप में, हमारे क्या हमारे घर पर रहो, तो देखा घर ऐसा मतलब ठीक है बड़ा घर था, लेकिन ऐसे नहीं कि 50 कमरे उसके अंदर, ऐसे कैसे रहेंगे आप, चिंता मत करो आ जाओ आप, हम कर देंगे आपकी व्यवस्था। तो हम लोग, हमको लगेगा कि क्या बात कर रहे हैं, क्या होगा इसके अंदर। उन्होंने ना 68 लोगों को अपने घर पे रखा, कितने लोगों को, 68 पीपल, बॉयज एंड गर्ल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, सबको मिलके हम लोग घर में घुस गए उनके। उन्होंने टाट के घर बनाए, ओपन एयर में घर में जितनी ओपन जगह थी उसमें टाट के कमरे बनाए। टाट मतलब क्या होता है, वो जो चावल गेहूं डालते ना 100 किलो की बोरी होती है ना बोरी, वो बोरी के कमरे बनाए डिवीजन डाल के, और एक खोलेंगे ऐसा तो एंट्री, और एक बाथरूम, उसके बाद एक रहने का कमरा, उसके बाद एक बाथरूम। और बाथरूम कैसे समझेगा, बाथरूम एक घर है, बाहर एक माता जी बैठेगी और बताएगी ये बाथरूम है, इधर नहीं जाना है आपको, वही जाना है। उस तरफ प्रभु जी का रहने का इंसान, और इतनी ठंड थी, हमको पता है ना था मुंबई में जनवरी में कितना प्रेजेंट होता ना, बिल्कुल जनवरी, उधर मानो बर्फ पड़ने की खाली कमी थी बस, इतनी ठंड थी, मुंबई के लोग सब फ्रीज हो गए उसके अंदर। तो उन्होंने ना टाट के ही टॉयलेट बनाए, सब गड्ढे खोदे अंतर से अपने, और सब कवर करके उसके अंदर बाहर एक बड़ा भगोना रखा, पानी लेके जाना उसके अंदर, अपना बिजनेस करके आना लौट के। और पानी इतना ठंडा होता था कि सब यू पुट योर फिंगर ना यू गेट अ करंट, इलेक्ट्रिक करंट लग गया, इतना ठंड होता था। तो अगर सुबह आपको गर्म करना है पानी ना, तो शाम तक गर्म ही होता रहेगा पानी, आपको मिलेगा नहीं। तो क्या करते थे, रात को 12 बजे उनके घर के लोग बड़े भगोने में पानी आधा गर्म करके रखते थे, और फिर 3 बजे उसको सुबह उठकर वापस गर्म करते थे, तो आपको आधा घंटे में पानी गर्म मिलेगा। ऐसे लोगों ने हमारी सेवा की है, बोलो 68 लोगों की, यहाँ पर भी पानी देना है, इधर भी पानी देना है, और सबको रोटी खिलानी है घर पे बना के, सबको, सब यंग जवान लोग थे, ठंड का मौसम है कितना खाते होंगे, सबको दूध पिलाते थे घर के गाय का दूध, सब लोगों को रात को आपने दूध लिया सबको देते थे, सबको कंबल मिला कंबल देते थे। और हमने उनको सोते हुए देखा नहीं 23 दिन तक, वो होल टाइम देर अवेक ओनली टिल वी गो टू स्लीप देर अवेक, वी गेट अप इन द मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ऑलरेडी अवेक, कोई चूल्हे में लकड़ी डाल रहा है, कोई पानी को गर्म करने के लिए रेडी कर रहा है, कोई दूध गर्म कर रहा है, कोई नाश्ता गर्म कर रहा है। ऐसा हमने हमारी सेवा की, घर में रखा हमको 23 दिन तक ठंड के अंदर, सबको रजाई दिया, सबको ब्लैंकेट दिए, सबको दूध पिलाया, गर्म पानी दिया स्नान करने के लिए। और उनके घर में मेरा ऑफिस था, कैंप का ऑफिस, उनके घर पे एक रूम दिया था कि इधर मेरा ऑफिस। ऐसा अद्भुत लोग है, और हम लोग तो रह रहे हैं लेकिन देख रहे हैं कि बाहर उनका 24 घंटे भंडारा चल रहा है, एनीबॉडी कम्स ईट प्रसाद एंड गो, सिंपल रोटी सब्जी दैट्स ऑल, खाओ चलो। आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 92 की बात कर रहा हूँ। अभी तो पूरा भंडारा एकदम बड़ा हो गया है, उन्होंने सब मशीन लाए रोटी की, और दिन में सैकड़ों प्रसाद पाते हुए। अभी रेसिडेंट लोग ही कितने हो गए उनके, 250 लोग रेसिडेंशियल है उनके पास, मान मान के साधु स्कूल के विद्यार्थी घर के लोग आने जाने वाले मिलकर 250 लोग तो रोज खाता प्रसाद पाते हैं, नो चार्जेस, राधा रानी सब चला रही है। और कोई ऐसा सीजन नहीं है, दिवाली के दिन 7 दिन करते हैं, राधाष्टमी 7 दिन करते हैं, 24/7 ऑल थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है। कितनी श्रद्धा है उनके अंदर, देखो पैसा कहाँ से आएगा, कोई चिंता नहीं है, पैसा आ रहा है कहाँ से आ रहा है उनके पता नहीं है। ऐसे अद्भुत लोग हमने वहां देखे हैं। एक हमारे डॉक्टर नहीं थी, वो जा रही है कैंप में काम करते ना, वो तो लोग बहुत लोग पहचान थे कि माता जी ने ऑपरेशन किया था, मेरी दादी का ऑपरेशन किया था, मामी का ऑपरेशन किया था। एक बार वो जा रही दर्शन करने जा रही है, तो वहां से वो ब्रजवासी माँ जो है अपने बेटी को ना स्कूल लेके जा रही है, एक हाथ में बैग है, हाथ में टिफिन है बेबी का, तो रोटी दी, थोड़ा सब्जी रोटी दिया उसको, तो लेके जा रही है। रास्ता में माता जी मिलती, डॉक्टर ने माता जी, पता जी क्या है, कब से मिली नहीं तुम, कब से आ रही हो, कितने दिन हो गए आई नहीं तुम, तो अच्छा हुआ गले वले मिले। बोलते चलो घर पे रोटी खाने, नहीं अभी जल्दी में हूँ, मुझे जाना है जरा, तुरंत दर्शन करके वापस जाना है। अच्छा घर पे नहीं आओगे रोटी खाने के लिए, ये लो बच्चे का रोटी निकाल के दे दे। डॉक्टर ने बोल रही है अरे बच्चा है स्कूल जा रहा है ना वो, मैं तो आगे आके रोटी खाऊंगी आपकी। अरे पता नहीं कब आओगे तुम रोटी खाने के लिए, मैं तो उसको दोबारा रोटी जाके बीच वाले समय में जाके मध्यान्ह काल में जाके दे के आऊंगी उसको, लेकिन तुम कहाँ मिलोगी मुझे, बच्चे की रोटी निकाल के दे दिया उसको। देखो ये केवल ब्रज में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है, मजा रहा आपको। ये सब राजा रानी के धाम का महिमा है, सब माँ के प्रेम का महिमा है। इतनी त्याग प्रवृत्ति प्रेम प्रवृत्ति और कहीं नहीं हो सकती है। यहाँ पर कैसा लिखा होता है, सावधान कुत्तों से सावधान, डोर भी लिखा होता है भाई अंदर ही मत आओ, कुत्ता का नाम लिख के रखा है, कभी फोटो भी लगाते कुत्ते। वहां पर आप किसी भी घर में कभी भी प्रवेश कर सकते हैं, बिलीव मी नो एग्जैगरेशन, कभी भी आप प्रवेश करो और बोलो भैया भूख लग रही है बैठो रोटी पाओ सब्जी पाओ जो भी छाछ पियो, कभी भी जाओ। हमारी महाराज की यात्रा में हम लोग यही करते थे, बार बार पूछने का कोई व्यवस्था होती नहीं थी, तो महाराज से पूछो महाराज भिक्षा करेंगे, हाँ जाओ भिक्षा करो, हम सब लोग यंग बॉयज एंड गर्ल्स विल गो एंड झोपड़ी में जाके भिक्षा करते थे। हम लोग मुंबई के डॉक्टर्स ब्रज के झोपड़ी में मट्टी की झोपड़ी में आके बोल रहे भैया भूख लग रही खाना खिलाओ, तो मैया तुरंत रोटी वोटी ला के दे रही है, सब चार पांच घर से रोटी इकट्ठा करते थे, सब्जी छाछ मक्खन। और हम लोग अभी भी याद है कि अक्षय वट है ना, अक्षय वट नाम की जगह है, उसके नीचे बैठकर हमने महाराज को सब ला के दिया था और महाराज सब बैठ कर सबको बांटा था, हमने उसको खाया था, वो भी हाथ में रोटी ऐसे उसमें खा रहे सब। लेकिन मुंबई में जाओ किसी के घर पे, अपनी बिल्डिंग में जाओ, पहचान वाले लोग बोले भैया भूख लग रही रोटी खिलाओ, तो क्या बोलेंगे तुम्हारी घर रोटी नहीं क्या, कितना डिफरेंस है। तो ये समझने के लिए हमको धाम में जाना चाहिए, धाम की महिमा क्या है, धाम में रहने वाले लोगों की महिमा क्या है, उनका भाव क्या है। हाँ उनके अंदर राधा रानी के धाम में मैंने देखा है ग्रैटिट्यूड इतनी होती है ना अनबिलीवेबल। 92 में ऑपरेशन किया है किसी का, 92 में आज भी आकर मिलता है व्यक्ति, वो जो 6 साल का बच्चा था अभी वो 36 साल का हो गया है, उसको 2 बच्चे हो गए हैं, लेकिन वो भी आता है बोलता है आप हमारा ऑपरेशन आपके कैंप में हुआ था, मैं 6 साल का था, दोनों आंखें से अंधा था मोतिया बिंदु के लिए, और आपने दोनों का ऑपरेशन मुंबई जाके करवाया था, और आज मैं शादीशुदा हूँ, मैं खेती करता हूँ, आज भी मिलने पाते हैं और रोटी मक्खन दिखे जाते हैं। आप लोग क्या करें, 1 साल आएंगे थैंक यू बोल के जाएंगे, 30 साल क्यों आएंगे आप, याद भी नहीं रहेगा। वहां के लोगों में मैंने देखा है राधा रानी की कृपा ऐसी है कि एक बार किया हुआ उपकार जिंदगी में नहीं भूलते हुए और लगातार उसका रिपेमेंट करते रहते हैं, और हर रोज हर कैंप में कुछ लोग आते हैं रोटी मक्खन छाछ देके जाते हैं डॉक्टरों के लिए। तो ये सब जो है ना ऐसा भी होता है, ये विश्वास रखने के लिए वहां जाना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, फिर महाराज जी को इच्छा थी कुछ रिपे करने की, तो महाराज ने उस समय 89 में तुरंत हाँ कर दी, कैंप होना चाहिए, मैंने बताया ना आपको लोग कितना करते हैं 25 ऑपरेशन कर देना आपको, तो आप अभी यहाँ करो। फिर हमने तुरंत वहां पर ऑर्गेनाइज कर दिया, ठंड के मौसम में उनके घर पे रहे और 185 ऑपरेशन किया फर्स्ट टाइम, 185 वाज अ बिग नंबर फ्रॉम 25 नंबर। फिर उसके बाद में फिर 220 हुए अगले साल, फिर 280 हुए, फिर 385 हुए, फिर ऐसे करते करते अभी हम 1100 ऑपरेशन करते हैं हर साल। फिर 1992 से लेकर 2007 तक हमने ऐसे एनुअल कैंप किए, लेकिन लोग बोलते थे हमारे पास इतने पेशेंट है आप जा रहे हो अभी कभी करोगे, अगले साल आओगे हमारा कैसा होगा, मंदे हो जाएंगे। तो हमने कहा कि नहीं यहाँ पर भी बहुत ज़रूरत है, तो जगह भी ढूंढ रहे थे हम लोग, जगह नहीं मिल रही थी। तो हमारे जिस जगह पर रहते थे उस जगह पर एक आश्रम के ओनर थे, उनको पता चला कि हम लोग कैंप करते हैं और जवान लोग अच्छी सेवा करते हैं, तो जगह ढूंढ रहे हैं। बोले क्यों जगह ढूंढ रहे हो आप, हमारे आश्रम में आपको बांध के देते ना हॉस्पिटल, आप यहीं चलाओ, यहीं पर से कैंप करो, यहाँ पर भी सेवा करो। तो उन्होंने अपने खर्चे से हमारे डिजाइन के अनुसार हमको एक छोटा सा अस्पताल बना के दिया। ऑपरेशन थिएटर, चेकअप जगह, चश्मे की दुकान, बैठने की जगह, रिसेप्शन, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिया। वहां पर हमने 2007 में मंथली कैंप शुरू किए, क्योंकि तो फुल टाइम हमको आना मुमकिन नहीं था, तो एनुअल कैंप करना है और हर महीने में 1 से 7 फिक्स डेट वहां पर जाना है और 100 ऑपरेशन करके आने हैं। साल में कितने करने हैं? 700-800 करने हैं एनुअल में, और महीने वाले में 100 करके आने हैं। फिर भी हर महीने के एंड में जगह नहीं है, लोगों को ऑपरेशन बाकी है, कब होगा, वेटिंग लिस्ट है बड़ी। तो फिर जोर लगाया बहुत, और फिर हमने 2011 और 12 में वहाँ पर जमीन खरीदी, सिक्सोली में, वहाँ पर चित्रा सखी का गाँव है, और जमीन खरीदी 5 एकड़। और फिर महाराज ने हमको कहा कि मेरी ये इच्छा थी उस समय, अभी रिवील किया महाराज कि अभी अस्पताल बनना चाहिए और गांव में बहुत बढ़िया सेवा होनी चाहिए। तो उस भूमि का जो भूमि पूजन है वो दिसंबर 13 तारीख को 2021 को है, जब महाराज के वहां जाकर 50 साल पूरे होने वाले हैं। तो ये सब संतों की कृपा है। और मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि बिना संतों की सेवा किए हुए कोई आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होती, ये ध्यान रखना। आपके जीवन में अगर संत नहीं है कोई, और अगर आपके जीवन में कोई संतों की सेवा नहीं हो रही है, तो आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, वो ऐसा एक सुपरफिशियल स्पिरिचुअल लाइफ रहेगा। उसके अंदर कोई अनुभूतियां नहीं। आप बहुत पंडित होंगे, श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक उद्धृत करेंगे, कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे, ना आपके हृदय में अनुभूतियां नहीं होगी। वो अनुभूतियां उत्पन्न करने के लिए आपके जीवन में एक संत होना चाहिए, और वो संत के द्वारा आपके हाथ से सेवा होनी चाहिए, यानी संत की सेवा होनी चाहिए और उनके आदेश पर बाकी संतों की सेवा होनी चाहिए। एक आपको महाभारत की कथा बताता हूँ, आपको उसका प्रमाण मिलेगा। महाभारत की कथा में क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी, ये सब वनवास भोग रहे ना, तो वनवास में हिमालय में गए हो, हिमालय में भी गए थे, तो वहां पर अंग में वस्त्र नहीं है, बर्फ गिर रही है, खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने को जगह नहीं है, ऐसे वो चल रहे थे। इतने क्रश हो गए थे, इतने बीमार हो गए थे कि एक जगह पर ऐसे हुआ हिमालय में कि द्रौपदी और चारों भाई, तीनों भाई नकुल, सहदेव और अर्जुन, ये सब बेहोश हो गए और गिर गए ग्लानि से। एक ही भीमसेन थोड़े जगह थे और युधिष्ठिर महाराज दोनों जगह थे। तो भीमसेन उनको ना, ये अपनी बड़े भाई की अवस्था और छोटे भाइयों की और पत्नी की अवस्था देखकर बहुत सा तिलमिला उठे हो और बहुत कुछ बोलने लगे हो। कहते भीम, कहते आपका आपका धर्म पालन जो है उसका क्या फायदा है, आप इतने धर्म धर्म करते हो, आपका नाम धर्मराज है, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉलोइंग द धर्मा, आपके धर्म ने, धर्म पालन ने आपने क्या दिया आपको। हाँ, आपकी इतनी यज्ञ सेनी पत्नी है, यज्ञ से उत्पन्न हुई सुगंधित पत्नी है, देखो बेहोश गिरी है आज, देखो इस गांडीवधारी विश्व विजेता धनुषधर को देखो, धनुधारी को देखो, अर्जुन को बेहोश पड़ा है आज, कहाँ गई उसकी वीरता, खाने को अन्न नहीं उसको। और आप ऐसे हो कि तीनों लोगों पर राज्य करने की आपकी योग्यता है, यू आर सच अ क्वालिफाइड पर्सन, यू कैन रूल द 3 वर्ल्ड्स, इंद्र विल बाउ डाउन टू यू, इतना आपकी योग्यता है, और आप देखो वन में भटक रहे हैं यहाँ पर बिना वस्त्र के, बिना भोजन के, ऐसे बहुत कुछ बोलता है वो। आप हमें आगे दीजिए, ये धर्म भरम सब छोड़ दीजिए, आप बोलिए मैं भीम और मेरा भाई अर्जुन दोनों ही काफी है, पूरे सबको समाप्त कर देंगे हम लोग, ये सब करने की जरूरत क्या है, ये छल करके आपको वनवास में बिठाया हुआ है, ये कोई सत्य काम करके बिठाया नहीं है, इनका सब नाश कर देना चाहिए। आप इतना सत्य सत्य करते हो तो सत्य जो है वो बल से प्राप्त करना चाहिए, ये नियम से पालन करते बैठेंगे तो जन्म भर जंगल में रहना पड़ेगा, ऐसे वो उद्विग्नता से बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज शांत रूप में सुन रहे हैं, और इसकी कोलाहल सुनकर वो बेहोश तो भी जग जाते हैं। हाँ, इतने जोर से बातें हो रही है। और युद्ध भी दिखा नहीं ऐसे कि भाई भीमसेन इतने जोर से अपने बड़े भाई से बात कर रहे हैं, इट्स लाइक अनहर्ड ऑफ। सो दे वेक अप, द्रौपदी उठ जाती है, नकुल सहदेव उठ जाते हैं, अर्जुन भी उठ जाते हैं, भैया क्या हो रहा है। और जैसे देखते ना वो क्या बोल रहा है, सब उसमें हमें यहाँ मिलते हैं, यस यस ही इज राइट, व्हाट ही इज सेइंग इज राइट। एक तो बेहोश में जग गए, तुरंत उसी के साथ हो गए। तो धर्मराज बोले, शांति से बोले, देखो मैंने धर्म का पालन करने का जो भी प्रण लिया है वो तुम्हारे बलबूते पे नहीं लिया है। नॉट दैट बिकॉज यू सपोर्ट मी आई विल फॉलो धर्मा, मैंने मेरे बलबूते पर धर्म का पालन करने का निर्णय लिया है। और अगर आपको ये बर्डन लगता है, बोझ लगता है, तो अभी मैं आप लोगों को रिहा कर देता हूं मेरे बंधन से, कोई जरूरत नहीं। गुस्से से नहीं बोल रहे, शांति से बोल रहे कि आप लोग आज अभी इस वक्त से मुक्त हैं, स्वतंत्र है, आप चले जाओ, आप चले जाओ, आपको जहां रहना है जो करना है करो, मेरा जो भी नियम है वो मैं पालन करूंगा, आप मुझसे मुक्त हो। तो वो सुनकर ना भीमसेन चरणों में रोते रोते फुट फुट कर रोते गिर गए, अर्जुन भी रोते रोते फुट फुट गिर गए, चरणों में गिर गए। तो कहते भैया हमें धर्म और न्याय की पहचान नहीं है, बिल्कुल भी डोंट नो व्हाट इज धर्म, व्हाट इज न्याय, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, हम तो केवल आपको जानते हैं। और आपकी इतनी बुरी अवस्था देखकर हमको बहुत बुरा लगा, इसलिए हमने बोला, लेकिन भैया आप जो कहेंगे, अगर आपको वन में सुख है तो हमको भी उसमें सुख है, आपको जंगल की बर्फ में सुख है तो हमको भी सुख है, आप जो कहेंगे उसमें हमको सुख है। तो उस जगह पर आचार्य टिप्पणी देते हैं कि ऐसे एक महात्मा का जीवन में सहारा लेना चाहिए। ओके? ऐसे एक महात्मा का जीवन में सहारा लेना चाहिए जिसके सहारे से आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते। तो वहां पर और एक पटपोट आता है, वो पटपोट ये है कि अगर आपको भगवत धाम जाना है तो आप जन्म जन्मांतर तक साधना कर सकते हो, लेकिन भगवत धाम नहीं पहुंचेंगे। क्यों? जब तक गुरु नहीं स्वीकार करेंगे। और जो गुरु स्वीकार करता है, हाँ, आचार्यवान बीजामाम, क्या श्लोक है वो, जो आचार्यवान है, निष्ठावान है आचार्य के प्रति और आचार्य की सेवा करता है, वो कहते हैं इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। दैट इज द सीक्रेट बिहाइंड ऑल दिस। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात न गति पुतोपि। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज है ना, ये अभी भी कहां से निकली बात, ये कि धाम में हम जाते हैं, 50 बार मत्था टेकते हैं, यात्रा करते हैं, दान देते हैं, गाय दान करते हैं, क्या क्या करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, उसका तब तक फायदा नहीं होगा, सब जमा रहेगा आपका अकाउंट, आप उसको एनकैश नहीं कर सकते। तब तक फायदा नहीं होगा जब तक आपके जीवन में कोई आचार्य गुरु संत प्रवेश नहीं करता, और उसकी सेवा में आप जब लगते हो तब फिर आपको वो साक्षात्कार होने लगते हैं, जो आपने सब किया ना, जब किया है, ध्यान धर्म किया है, पुण्य किया है, तीर्थ किया है। तो वृंदावन में जाने की रहस्य क्या है, बरसाने में जाने का रहस्य क्या है, वहां के ब्रजवासियों की जब आप सेवा करेंगे तब आपको वो समझेगा रहस्य क्या है वहां का। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, एक तो वो माता का उदाहरण मैंने आपको दिया, बच्चे की रोटी निकाल कर दे दिया, है ना। रात में हम लोग कैंप में जाते हैं ना, राउंड लेते हैं, पेशेंट लोगों को ऑपरेशन हुआ है तो हम लोग जाके राउंड लेते हैं, कोई तकलीफ में तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, ऐसे राउंड लेते हैं। तो ऐसे हम लोग एक बार रात को 1 बजे हमारे वार्ड में राउंड लेने गए थे, तो डिम लाइट था, पूरा बंद था, सब कुछ सो रहे, बहुत ठंड का मौसम है तो पूरा हृदय ओढ़ कर सो रहे हैं। उसमें पेशेंट के एरिया में से राधे राधे ऐसा आवाज आ रहा है, तुमको लगा कि कोई दर्द होगा, पोस्ट ऑपरेटिव पेन होगा, उसको चक्कर आती होगी, बीपी बढ़ गया होगा, कोई आंखों में दर्द होगा। हम लोग उस तरफ गए जहाँ से आवाज आ रही है, नर्स को लेकर गए, भाई देखो कोई पेशेंट रो चिल्ला रहा है, देखो कुछ तकलीफ होगी उसको। रजाई वो उठाई तो क्या देखा, एक नहीं 4 रजाई उठाई जहां से आवाज आ रही है। चारों जगह पर रजाई उठाने के बाद क्या देखा कि माता और प्रभु जो भी ब्रजवासी है गहरी नींद में है, और गहरी नींद में राधे राधे पुकार रहे हैं। हम लोग रात की पूरी नींद निकाल कर सोकर स्नान कर जब को बैठते हैं और सो जाते हैं, और वो लोग रात की गहरी नींद में राधे राधे पुकार के, बोलो राधे राधे, ये ब्रजवासी है और दूसरे हम हैं। इनको बहुत सुनना पड़ता है प्रवचन, हाउ टू स्लीप, बी अवेक ड्यूरिंग स्लीपिंग, ड्यूरिंग जपा। आज भी सुबह मैंने बताया 5 मिनट के लिए, कि जब मैं निद्रा से मुक्त कैसे होना चाहिए, जब मैं एकाग्र कैसे होना चाहिए, इसलिए हम सेमिनार सुनने पड़ते हैं। वो लोग गंवार लोग, गांव के किसान लोग, वहां पर रात के गहरी नींद में एकदम स्पष्ट रूप से राधे राधे पुकारते हैं। बताओ राधा रानी उसमें क्यों नहीं होगी, बताओ वाय राधा रानी विल नॉट ब्लेस देम। ऐसा अगर भजन आपका होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे भजन के लिए कोई एमडी होने की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, हमारे भजन के लिए हमको अच्छे घर में ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, या हमारे भजन करने के लिए आपको बहुत धनी बाप का बेटा होने की जरूरत नहीं है। जो हम सोचते हैं ना, क्या प्रभु जी आपका तो क्या, आप तो पढ़े लिखे हो, हम कैसा भजन कर सकते, हम तो अनपढ़ गंवार है, ऐसे जनरली बॉम्बे में लोग बताते हैं। प्रभु जी तुमसे क्या बोलो, तुम्हें शिकले आ तुमसे क्या, तुमसे क्या बोवा। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे गंवार लोग, सबसे अनपढ़ लोग, सबसे गरीब लोग, कोई कुल भी उनका श्रेष्ठ इतना ही है, कोई गुजर है, कोई जाट है, कोई कुछ है, इन सब लोग राधे राधे। मैं कई उत्सव में वहां पर गया हूं और वहां पर ना वो उत्सव में कई घंटे गाते हैं, तो एक उत्सव में बैठा था मैं, ऐसे लिखे ना विक्रम साहब, हम लोग बॉम्बे भाषा में चले, एकदम फटीचर लोग थे, मतलब एकदम ऐसे गंदे कपड़े पहने हुए, कोई उसमें कोई सुंदरता नहीं है, कोई कल्चर नहीं है, ऐसे आपको लगेगा हमारी दृष्टि कैसे ना, शहर के लोग कैसे होते ना, वो देखते हैं कि क्या कपड़ा पहना है, कैसे दिखते हैं, चश्मा पहने नहीं पहना है, पढ़े लिखे कि नहीं है, ये हम लोग का दृष्टि है, वी आर कंडीशन। तो वो सबसे फेल है वो लोग, वो लोग बैठकर ऐसा भजन गा रहे थे, ऐसा भजन गा रहे थे। अचानक मुझे ऐसा अनुभूति आई मन में कि भारत में 200 साल ब्रिटिशों ने राज्य किया, मुसलमानों ने उसके पहले 1000 साल राज्य किया, 1000 साल, वो मोहम्मद घनी वगैरह कितने लोग थे, उन्होंने 1000 साल राज्य किया, उसके बाद ब्रिटिश लोग आए, 200 साल राज्य किया, तभी भी ये देश कभी भी क्रिश्चियन या मुस्लिम नहीं हुआ। बाकी कितने देश है ऐसे, इजिप्ट पहले पर्शियन कंट्री थी, वो भी मुसलमान देश हो गया, इंडोनेशिया, बर्मा, ये सब लोग हिंदू देश थे, सब मुसलमान क्रिश्चियन देश हो गए, भारत क्यों नहीं हुआ। उसका आंसर मुझे उदय मिला उस उत्सव में, कि जितना गहराई में इनके भर में भक्ति भाव है हृदय के अंदर, वो कोई ब्रिटिश कोई मुसलमान उसको उखाड़ नहीं सकता, इतना गहरा में भाव है। और राधा रानी कभी इस भक्तों को छोड़ नहीं सकती, वो उसको छत्रछाया में रखेगी, इतना प्रेम है उनके हृदय में, ना पढ़े लिखे हैं, ना कोई धनी व्यक्ति है, ना कोई कुछ है, ये शक्ति है उस धाम की। और ये रहस्य हमको समझ में आया ना, तो राधाष्टमी भी आपको समझ में आएगा कि राधाष्टमी क्या चीज है। नहीं तो ठीक है, हम लोग अभिषेक कर रहे हैं, थोड़ा गीत गा रहे हैं, ठीक है, लेकिन राधाष्टमी का असली रहस्य क्या है, ये हृदय से की हुई भक्ति जहां होती है वहीं राधा की कृपा होती है और वहीं कृष्ण की प्राप्ति होती है। ये हमने अभी कई सालों में हर कैंप में देखा हुआ है कि व्यक्तित्व मतलब क्या होता है। आज पैसे से लोगों को मान मिलता है, लेकिन गुणों को कौन पूछता है, कोई नम्रता है कि नहीं है, कोई कृतज्ञता है कि नहीं है, कोई सेवा भाव है कि नहीं, मददगार स्वभाव है कि नहीं, सहयोग की भावना है कि नहीं, मिलनसार स्वभाव है कि नहीं, मित्रता का भाव है कि नहीं, हु केयर्स। और वो सब धन वहां पर खचाखच भरा हुआ है, कोई पाबंदी नहीं है दरवाजे पर आने के लिए किसी को, कहां से आए हो, क्यों आए हो हमारे घर पे, क्यों घर में आ रहे हो, हमारे बाहर बैठो, ऐसे कोई बात नहीं करेगा। मैंने अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार, मैंने ऐसे क्या कह रहे हैं, शौक से बोल सकते हो या ऐसे ही प्रवेश किया कितने लोगों के घर में मैंने, और बोला भैया रोटी दो, भैया ने तुरंत चूल्हा जला के रोटी बना के गरम गरम भाजी बना के पेट भर खिलाया, बेटा दोबारा भी आना, फिर कब आओगे, कहाँ से आए हो, अच्छा अच्छा बरसाने से आए हो, अच्छा ठीक बैठो, और कोई साथ में तो ले आओ उनको भी। इतनी मट्टी की झोपड़ी है, दिखता है कोई धन है ही नहीं इस घर में, कोई किसान छोटी बहुत खेती करता होगा, लेकिन दिल कितना उदार है उनका, ये धाम का रहवास है। इट इज नॉट दैट वी बस जाते हैं, हम लोग उतरते हैं और कथा सुनते हैं, दर्शन देते हैं, वापस आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन धाम का रहस्य इनके हृदय में छुपा हुआ है। इन लोगों का संपर्क होगा, इनकी सेवा होगी आपके हाथ से, तो फिर वो धाम का जो रहस्य है वो आप सबके हृदय में प्रकाशित होगा। किसी ना किसी प्रकार से सब लोगों को वृंदावन बरसाना से जुड़ना चाहिए, वो भी अपने गुरु के छत्र छाया में, ऐसे भटक के नहीं, क्योंकि जो भटक के चले गए ना वहां पर, कुछ लोग थे हमारे, अभी बोलता हूँ कहानी, कुछ लोग थे कैंप में आए हमारे सेवा करने के लिए, अपने अपने ही मंदिर के लोग थे, और इतना प्रभावित हो गए अपना मंदिर ही छोड़ दिया और वहीं पर रहने लगे। एक साल के बाद भाग गए वहां पर, ना वापस मंदिर में आए ना वहां उनके साथ में, चले गए माया में। क्यों? क्योंकि धाम का परिचय भी संत की कृपा के बिना नहीं होता है। किसी के आश्रय में आपको जाना है, अकेले जाकर भटकना नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, फिर आप ही भटक जाओगे, धाम रहेगा बाजू में, आप कहीं भटक जाओगे अपने आप। किसी ने मुझे पूछा था कि धाम में ज्यादा माया होती है कि शहर में ज्यादा माया होती है, क्या उसका उत्तर है बताओ? व्हाट इज द लॉजिकल आंसर? हाँ, मन में। उत्तर उसका यह है कि शहर से अधिक माया धाम में होती है। अभी कंस किधर था? बंबई में था क्या? किधर था कंस? मथुरा में था। मथुरा किधर है? ब्रजमंडल में ना। अरिष्टासुर जहां राधा कुंड निर्माण हुआ, वो कहां पर था? ब्रज में था। तो सबसे भयंकर राक्षस कहां पर आए थे? वृंदावन धाम में आए थे। कंस भी उधर ही था। उतना कहां पर आए थे? गोकुल में आए थे, बॉम्बे में या कलकत्ता में नहीं आए थे। इसका मतलब क्या हुआ? जहां कृष्ण है उसी के पास माया खड़ी होती है। आपने कृष्ण का सहारा लिया है तो माया आपको चुने सकती है, लेकिन आप धाम में जाकर कृष्ण का सहारा छूट जाता है आपका, यानी गुरु का सहारा छूट जाता है, उसके माने कृष्ण का सहारा छूट जाता है, तो निकटस्थ माया तारे झपटी या धोरी उधर ही आपको पकड़ लेती है। तो आपको लगेगा मैं धाम में हूं, लेकिन वहां पर भी चरस पीते हैं, फिर वहां पर भी गांजा पीते हैं, वहां पर भी कुछ समझते कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, कितने साधु लोग बैठ के भजन कर रहे हैं, हम भी भजन कर रहे हैं, चरस गांजा पीते हैं। इस प्रकार की मोह माया धाम में होती है। बंबई में आपको कोई चरसी साधु नहीं मिलेगा, उधर ही मिलेगा। ये तो ये सब रहस्य की बातें। वहां पर जाना, वहां पर जाकर भटकना भी बहुत आसान है अगर आपका साधु का सहारा नहीं होगा। तो साधु का सहारा होगा तो सारे रहस्य का भेद होगा आपके लिए। ये धाम की महिमा है। इसलिए हमने अभी वहां पर वो भूमि पूजन के बाद तुरंत अस्पताल बांधने का निर्णय लिया है। एक साल के अंदर अस्पताल खड़ा हो जाएगा। क्यों मान रहे हैं उसको? क्योंकि हमारे मंदिरों के भक्तों को निरंतर अगले 4-5 पीढ़ियों तक सेवा करने का मौका प्लेटफॉर्म बना रहे वहां पर। वहां 50 प्रकार की सेवा है। रोटी देने की सेवा है, रोटी बनाने की सेवा है, सब्जी लाने की सेवा है, सब्जी बनाने की सेवा है, मरीजों को टॉयलेट लेके जाने की सेवा है, ब्रजवासियों को इंजेक्शन देने की सेवा है, पेपर बनाने की सेवा, एंट्री एग्जिट ऑपरेशन थिएटर, अंदर गया बाहर आया, वार्ड में एंट्री किया बाहर आया, डिस्चार्ज हो गया, बहुत सारी सेवाएं वहाँ पर। उसमें डॉक्टर होने की जरूरत नहीं, डॉक्टर की अपनी सेवा है, नर्स की अपनी सेवा है, उसके बाद भी बहुत सारी सेवाएं हैं। तो हर कैंप में 300-400 लोग वहां पर आते हैं और टर्न बाय टर्न अपनी सेवा करते हैं। फिर हम लोग उनको क्या करते हैं, जो कैंप में आते हैं, एक बैच में आए, सेवा किया, तुरंत उनको 2 दिन यात्रा में लेके जाते हैं। पहले सेवा करवाते हैं चित्र से, प्रसाद पाते हैं, वहां रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, कथा कैंप में भी रोज कथा होती है, शाम को दिन भर सेवा करो, शाम को कथा सुनो धाम की महिमा। तो सारी सेवा समाप्त होगी एक बैच में, तो वो बैच को घुमाने लग जाए, दूसरी बैच ज्वाइन करती थी, फिर दूसरी बैच का हो गया तो उनको भी घुमाने लग जाते हैं, मतलब दर्शन कराते हैं। तो देखें अप्रिशिएट धाम बेटर, क्योंकि ब्रिजवासियों की सेवा लेकर भर भर के आशीर्वाद पाकर फिर जाते हैं, इतना वो लोग आशीर्वाद देते ना आप सुन। सबसे ज्यादा लोग रोते किधर है हमारे स्टाफ लोग? डिस्चार्ज एरिया में, क्योंकि डिस्चार्ज एरिया में जब मरीज घर जाता है तो उनको हम लोग 40 डेज की दवा देते हैं, उनको चश्मा देते हैं, उनको स्लीपर देते हैं, उनको ब्लैंकेट देते हैं, उनको सब कुछ गाइड करते हैं, समझाते हैं कि आपको इस तरह सोना नहीं है, झुकना नहीं है, स्नान नहीं करना है, वगैरह सब समझाते हैं। उस समय जब उनको विदा करते ना वो देकर, तब वो इतना आशीर्वाद देते हैं कि हमारे सारे स्टाफ लोग रोते रहते हैं उसमें आनंद के बाहर प्रभाव से, आनंद से अश्रु, ऐसा देखकर ओवरवेल्ड कि जिंदगी भर में हमको इतना आशीर्वाद किसी दिया नहीं, इतना हमको 7 दिन में मिला भर भर के। नोबडी गिव्स ब्लेसिंग दिस डेज, प्लीज अंडरस्टैंड। वो किसी के भला सोचने की प्रवृत्ति खत्म हो गई अभी, कि आपका भला हो, आपका कल्याण हो, ये सब अभी गया खत्म। कोई किसी को देता नहीं आशीर्वाद, घर के जो लोग देते नहीं, घर में भी इतने झगड़े होते हैं, इतना कलह है घर पे भी है, और वहां जाएंगे तो निरपेक्ष आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए कल्चरल शॉक फॉर यू, बिग कल्चरल शॉक, समबडी इज ब्लेसिंग यू, आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहे। ये सब जीवन के जो श्रेष्ठ गुण है ना, उनका अनुभव करने के लिए वो धाम में जाना चाहिए, ताकि ऐसा भी होता है ये भी आपको विश्वास लगेगा। नहीं तो मैं आपको यहां बैठकर कहानी बता रहा हूं, आपको लगेगा अच्छी कहानी थी, यहां तक सीमित हो जाएगा, लेकिन आपको जाकर ये अनुभव प्राप्त होगा ना, तो आपका जीवन बदल जाएगा पूरा, यू विल बी चेंज्ड कंप्लीटली। ये शक्ति का हमने अनुभव किया है। मैं कथा तो दुनिया भर में करता हूं, लेकिन जब वहां बैठकर कथा करता हूं ना, तो मुझे भी वो अनुभव होता है, तो कोई डिफरेंट चार्ज लगा हुआ है मेरे ऊपर, कोई दूसरा एक कोई वायर लगा दिया है मेरे ऊपर, तो कथा मेरी वही है। आज की जो स्टोरी बताई वही मैं वहां बताता हूँ, चलो डिफरेंट नहीं बताता हूँ, क्योंकि भगवान की लीला तो शाश्वत है ना, पूरी बदलती रहती है। लीला तो वही है भगवान की, पीले पोकर जाएंगे तो पीले पोकर की लीला तो वही है ना, लेकिन वहां पर जब मैं बैठकर कथा करता हूं तो मुझे भी कथा कहते समय ऐसा अनुभव आता है कि आई एम स्पीकिंग डिफरेंट देन इन बॉम्बे एंड पुणे, क्योंकि धाम की महिमा है। जो बंबई में हमारा कर्मचारी भक्ति वेदांत का है, जो हमको उनको धक्का मारना पड़ता है, अरे तुम लेट क्यों आए, जल्दी क्यों जाते हो, काम नहीं करते बराबर से, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं बराबर करते हो, ये करते नहीं, वो आदमी वहां पर 18 घंटे काम करता है बिना सोए हुए, बिना बताए हुए, बिना फॉलोअप किए हुए, बिना सुपरविजन के, और वो खुद ही बोलता है प्रभु जी इस जगह पर क्या शक्ति है पता नहीं है, यहाँ पर इतना काम करेंगे उतना एनर्जी कहाँ से मिलती है पता नहीं, और थकते भी नहीं उल्टे। मुंबई में 8 घंटा सोने पर भी हमको नींद पूरी नहीं होती, यहाँ पर 4 घंटा में टकाटक उठ जाते हैं, मंगलाती भागते हैं पहाड़ पे चढ़ के, और फिर 18 घंटा काम करते दिन में। हमने कहा हमारा तो यही अनुभव है, इस जगह में बहुत भयंकर शक्ति है। ऐसे नहीं कृष्ण यहाँ पर लोटपोट होते हैं, यहाँ पर भाई कृष्ण इज रोलिंग इन द डस्ट हियर, ऐसे नहीं है, वो राधा रानी का चरण स्पर्श हुआ है जमीन पे, इसलिए वो शक्ति है उस जमीन पर। तो ये सब अनुभव करने के लिए वहां जाना चाहिए, और केवल जाओ मत, यहां पर सेवा करो, और जा नहीं सकते हो तो यहां से सेवा करो, सेवा भेजो ताकि सेवा होती रहे, आपका कनेक्शन रहेगा उसके अंदर, आपको लाभ मिलेगा उसका, और आपको बहुत बड़ा धनी होने की आवश्यकता नहीं है, आपको करोड़पति होगा तो मैं दे सकता हूं, नहीं, कमी किस चीज की है, धन की कमी नहीं है, देने की प्रवृत्ति की कमी है। तो क्या कहते हैं, दातृत्व, द टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग, वो प्रवृत्ति जो है ना उसकी कमी होती है, धन की थोड़ी कमी होती है। आपके पास 100 रुपए है, आप 10 रुपए दे सकते हो, आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 1 लाख दे सकते हो, लेकिन देने की प्रवृत्ति होगी तो देंगे ना आप। अगर आपके पास 1000 करोड़ रुपए होंगे और आप कंजूस मारवाड़ी होंगे तो कैसे देंगे आप, नहीं देंगे, मतलब मारवाड़ी को नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, तात्पर्य क्या है कि आपके पास गड़गंज संपत्ति होने पर भी आप कंजूस रह सकते हो और आप उस ब्रजवासी माता की तरह गरीब हो सकते हो, लेकिन फिर बेटे की रोटी निकाल के मेहमान को दे सकते हो, दरवाजे पर आए हुए को रोटी खिला सकते हो। तो दिल चाहिए आपके को ना, वो दिल जो है ना, वहां जाकर देखो दिल क्या होता है, दिल भी कैसा होता है, वहां जाकर टेस्ट करो, अनुभव करो, शर्मिंदा हो जाएंगे हम कि हम मुंबई के पढ़े लिखे अच्छे दिखने वाले अच्छे वस्त्र पहनने वाले कितने कम गरीब और कितने कंजूस हैं हम लोग उनके सामने, हमारे अंदर कुछ गुण नहीं है। तो इतने मानव जीवन के इतने भयंकर समृद्ध गुण जो है उन गरीब लोगों के अंदर है, जो हमारे अंदर नहीं हो सकते, इतना पैसा होने पर भी नहीं हो सकता। ये धाम है, राधा रानी का धाम ये है, जब ये समझ में आएगा ना हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे।